हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कुछ देर बाद एक बड़े से स्टूडियो के सामने ऋषभ की कार आकर रुकी, और अभी तक लगभग शाम के 4 बज रहे थे। ऋषभ ने यहाँ पर आने से पहले अपनी असिस्टेंट से नहीं पूछा था कि उसे वहाँ पर कितने बजे तक पहुँचना था, और वैसे भी वो इस बात को लेकर इतना लोड नहीं लेता, क्योंकि जब सामने वाले लोगों ने ही ऑफर दिया था तो वो लोग खुद ही हमेशा उसके हिसाब से मैनेज कर लेते थे। वो पिछले 1 साल से इसी तरह काम करता आ रहा था, और अब तक सब ऋषभ के इस एटीट्यूड से यूज्ड टू हो चुके थे। लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छा था, उसके गाने भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। अगर वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर देता था तो वो ब्रांड तेज़ी से ग्रो करने लगता था, इसलिए ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए कंपनी उससे कॉन्टैक्ट करती थी। लेकिन वो ज़्यादातर लोगों को मना ही कर देता था, क्योंकि एक्टिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो इस फील्ड में नहीं आया था। उसे म्यूज़िक को और सिंगिंग से ही प्यार था, इसलिए वो उस पर ही पूरा ध्यान देना चाहता था। उसके इस तरह बार बार मना कर देने की वजह से उसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, और उसकी मार्केट वैल्यू भी, क्योंकि सारे के सारे कंपनी वाले किसी भी कीमत पर और उसकी सारी शर्तों को मानते हुए उसे साइन करने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि अगर बिना कॉन्ट्रैक्ट के वो फ्री विल पर भी एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट शूटिंग के लिए मान जाता था तो इसके लिए भी कंपनी राज़ी हो जाती थी। ऋषभ को भी अब तक इन सारी चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन वो इन सब पर इतना ध्यान नहीं देता था, और अभी अपने मैनेजर मयंक और असिस्टेंट रूही के बहुत ज़्यादा जोर देने पर ही वो यहाँ पर आया था। उसने सोच लिया था कि अगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया तो वो किसी बात का ही बहाना बनाकर तुरंत वहाँ से निकल जाएगा, उन लोगों के मुँह पर ही मना करके, क्योंकि ऐसे बार बार अपने मैनेजर और असिस्टेंट को मना करने से कोई फ़ायदा नहीं था। थोड़े दिन बाद वो लोग दूसरा प्रोजेक्ट लेकर उसके सामने आ जाते थे। ये सब कुछ अपने मन में सोचते हुए ऋषभ अपनी कार से बाहर निकला। उसने कार का गेट लॉक किया और फिर ब्राउन कलर के शेड्स अपनी आंखों पर लगा लिए। अपने बालों में हाथ डालकर बालों को पीछे की ओर काफ़ी एटीट्यूड से चलता हुआ वो स्टूडियो के अंदर आया। उसे देखते ही तुरंत वहां पर आसपास खड़े कुछ लोग उसके पीछे आने लगे, जिन्हें कि वहां स्टूडियो के सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, क्योंकि वो सारे ज़्यादातर ऋषभ के फ़ैन थे, या फिर उनमें से कुछ सीक्रेट रिपोर्टर भी थे जो कि इसी तरह की न्यूज़ और सेलिब्रिटी की फ़ोटोज़ के लिए यहाँ वहाँ स्टूडियो के आसपास घूमते रहते थे। ऋषभ ने उन लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप ही वहाँ स्टूडियो के अंदर आ गया। वहाँ पर अंदर आते ही उसके कानों में आवाज़ पड़ी, नहीं हमने तुमसे कहा ना, अभी हमारे पास कोई जॉब नहीं है। उसके सामने बैठा हुआ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर शायद स्टूडियो का मैनेजर होगा। जो कोई भी हो, ऋषभ उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं पहचानता, लेकिन वो अपने सामने खड़े किसी लड़के से ये बात बोल रहा था। ऋषभ ने उन दोनों की तरफ एक नज़र डाली, लेकिन उसे लड़के की सिर्फ बैक ही उसे नज़र आई, और फिर वहां से आगे बढ़ गया। ऋषभ को देखते ही वो आदमी भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ऋषभ तब तक आगे बढ़ गया था और वो वहां से जाने लगा। तभी पीछे खड़े हुए लड़के ने कहा, सर मेरी बात का जवाब तो दीजिए, आपने कल ही तो वो एडवर्टाइजमेंट डाला था ऑनलाइन, उसे देखकर ही तो मैं आया हूँ यहाँ पर काम के लिए, और अब आप ऐसे कैसे मुझे मना कर सकते हैं जबकि मैंने सारे इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए हैं। उस आदमी ने थोड़ा सा झल्ला कर कहा, सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने से ही तुम्हें ये जॉब नहीं मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर टैलेंट और पोटेंशियल भी होना चाहिए जो काम तुम्हें दिया जाए उसे पूरा करने का। उस लड़के ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए कहा, मैं कर सकता हूँ सर, आप जो भी काम देंगे मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा, आप चाहें तो मेरा टेस्ट लेकर देख सकते हैं। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखकर वो आदमी भी वहाँ पर रुक गया और फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर वो तुमने देखा ना, अभी अभी एक सेलिब्रिटी सिंगर यहाँ पर आए हैं, उन्हें किसी भी काम के लिए मनाना बहुत मुश्किल है, तो तुम उन्हें हमारे साथ ये प्रोजेक्ट और इसके बाद वाला प्रोजेक्ट करने के लिए मनाओगे, और बीच में वो काम छोड़कर ना जाए इस बात का भी पूरा ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। बोलो जिम्मेदारी लोगे, क्योंकि वो सिंगर जो है वो रॉकस्टार। वो आदमी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उस लड़के ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, यस सर, आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूँगा, वो चाहे कोई भी हो, मैं उसे कन्विंस कर लूँगा आपके प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। इतना बोलते हुए वो लड़का अपनी जगह से 2 कदम आ गया, और वो लड़का और कोई नहीं समर है, जो कि 2-3 दिन पहले करण के साथ हुई बहस की वजह से काम ढूंढने आया था, क्योंकि वो करण से कोई पैसे नहीं लेता था और उसके पार्ट टाइम ट्यूशन वाली जॉब से इतने पैसे नहीं बनते। समर का कॉन्फिडेंस देखकर उस आदमी ने भी एकदम सीरियस टोन में कहा, ठीक है फिर जाओ, आज अभी से शुरू होता है तुम्हारा टारगेट, तुम्हें सर को मनाना है इस एड शूट और हमारे ब्रांड प्रमोशन के लिए, यही अभी तुम्हारा काम है, अगर तुमने अच्छे से किया तो फिर तुम यहाँ पर परमानेंट हो जाओगे। उस आदमी की ये बात सुनकर समर खुश होते हुए बोला, सर मैं बहुत अच्छे से करूँगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, और जिसे भी कन्विंस करना है उसे हर चीज के लिए कन्विंस कर लूंगा मैं। उसे काम मिल गया इस बात के एक्साइटमेंट में समर के मुंह में जो आ रहा था वो बोलता ही जा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए वो आदमी वहां पर नहीं रुका और वो वहां से चला गया। तो समर इधर उधर देखने लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी जिससे अब तक वो बात कर रहा था तो उसके इस तरह अचानक से चले जाने के बाद अब वो किससे बात करे और कहां से अपना काम शुरू करे, उसे किससे बात करनी है और किसे कन्विंस करना है ये भी उसे नहीं पता था। इसीलिए वो अपना हाथ बांधे हुए इधर से उधर टहलने लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो एक तरफ ही बढ़ गया और वहां ऑपोजिट साइड से एक लड़का काफी तेज कदमों से चलता हुआ निकल कर आया। समर का ध्यान दूसरी तरफ था, वो स्टूडियो को इधर से उधर चारों तरफ नजर घुमाकर देख रहा था। तभी वो उस लड़के से एकदम ही टकरा गया।